दिन भर 7 मार्च दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फदल। लखनऊ में सुरक्षा बलों और एक चरमपंथी के बीच मुठभेड़ की खबरें। बेंगलोर टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाजी पलटी, सीरीज अब 1-1 से बराबर।
तीनों दिन डोमिनेट करने के बाद आज जिस तरह से हारा है तो ये तो बिल्कुल आग लग गई है सीरीज में।
बिहार में नशाबंदी के बाद गांजे और दूसरे नशे की खपत में उछाल।
जैसे इंसान को भूख होता है तो खाने की जरूरत होती है, जब इसको रोज हम यूज करने लगते हैं, समय पर उसको खोजता है, मांगता है, डिमांड करता है बॉडी, ये चाहिए, नहीं मिलने से आत्मविश्वास डगमगाने लगता है।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुरक्षा बल एक संदिग्ध चरमपंथी को पकड़ने के लिए अभियान चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रवक्ता राहुल श्रीवास्तव ने बीबीसी को बताया कि एक संदिग्ध की घेरेबंदी की गई है, पुलिस का प्रयास उन्हें जिंदा पकड़ने का है। इराक के मूसल से मिली खबरों के मुताबिक इराकी सेना ने पश्चिमी मूसल के सिटी सेंटर की कई अहम इमारतों पर अधिकार हासिल कर लिया है। इराकी सेना पश्चिमी मूसल को इस्लामिक स्टेट से मुक्त कराने के अभियान में जुटी है। सेना के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने मुख्य सरकारी इमारत, सेंट्रल बैंक कार्यालय और संग्रहालय पर अधिकार हासिल कर लिया है। कुछ रिपोर्टों में जानकारी दी गई है कि इस्लामिक स्टेट के लड़ाके सेना से कड़े संघर्ष में जुटे हैं। संघर्ष के बीच हजारों की संख्या में आम लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं। दक्षिण कोरिया और अमरीका के मिसाइल डिफेंस शील्ड तैनात करने के बाद चीन ने कहा है कि वो अपनी रक्षा के लिए कदम उठाएगा। दक्षिण कोरिया का कहना है कि डिफेंस शील्ड उत्तर कोरिया के हमले से रक्षा के लिए लगाई गई है। उत्तर कोरिया ने कल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। चीन अमरीकी शील्ड को लेकर ज्यादा चिंतित नजर आता है, जिसमें एक रडार है जिसकी पहुंच चीन के अंदर तक है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गैंग शुआंग ने कहा, मैं सिर्फ इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हम अमरीका और दक्षिण कोरिया की ओर से दक्षिण कोरिया में शील्ड की तैनाती का विरोध करते हैं। हम अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। इसके परिणामों की जिम्मेदारी अमेरिका और दक्षिण कोरिया पर है। हम सभी पक्षों से अनुरोध करते हैं कि वो तैनाती की प्रक्रिया बंद करें और गलत रास्ते पर न बढ़ें। ये थे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गैंग शुआंग के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया और इराक की सुरक्षा स्थिति पर चर्चा के लिए तुर्की, रूस और अमरीका के वरिष्ठ सेना अधिकारी तुर्की में जुटे हैं। सीरिया के संघर्ष में अलग अलग पक्षों का समर्थन करने वाले देशों के बीच ये पहली बैठक है। तुर्की और अमेरिका सीरिया की सरकार के खिलाफ हैं, जबकि रूस सरकार के समर्थन में है। तुर्की ने मनबित शहर पर कार्रवाई के संकेत दिए थे, इसके बाद ही ये बैठक बुलाई गई है। सोमालिया के नए राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद ने 6 मुस्लिम देशों की यात्रा पर पाबंदी को लेकर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ताजा आदेश की आलोचना की है। इन देशों में सोमालिया भी शामिल है। उन्होंने कहा कि अमरीका को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि सोमालिया के लोग अमरीकी समाज में कितना योगदान देते हैं। राष्ट्रपति ने कहा, हम चाहेंगे कि यात्रा पर लागू की गई पाबंदी हटाई जाए। हमें अमेरिकी सरकार से बात करनी होगी, क्योंकि सब जानते हैं कि वहाँ बड़ी संख्या में सोमालिया के लोग रहते हैं। मुझे यकीन है कि वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था और समाज में अलग अलग तरह से योगदान देते हैं। हमें उनके योगदान की बात करनी चाहिए, न कि सिर्फ उन लोगों की जो दिक्कतें पैदा करते हैं। ये थे सोमालिया के राष्ट्रपति के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। भारतीय टीम ने बेंगलोर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया पर 75 रन से जीत दर्ज की है। 4 मैचों की सीरीज में भारतीय टीम 1-1 की बराबरी पर आ गई है। दूसरी पारी में भारतीय टीम ने 276 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 188 रन का लक्ष्य रखा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम 112 रन ही बना सकी। केएल राहुल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। तुर्की के विदेश मंत्री मेवतुलू चावुशावलू ने कहा है कि उन्हें जर्मनी के हैम्बर्ग में रहने वाले तुर्क लोगों के बीच जाने से कोई नहीं रोक सकता है। हैम्बर्ग में आगामी मंगलवार को उनका एक कार्यक्रम प्रस्तावित था, जिसे शहर के प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। उन्होंने कहा कि अगर तुर्की के लोगों से मिलने में उन्हें दिक्कत हुई तो उनका देश इसका जवाब देगा। तुर्की में अगले महीने संविधान संशोधन पर जनमत संग्रह होना है। तुर्की के नेता इसी वजह से जर्मनी में रहने वाले तुर्क लोगों के बीच जा रहे हैं। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल के साथ सेल्फी को लेकर इंटरनेट पर ट्रोल का शिकार हुए सीरिया के एक शरणार्थी फेसबुक के खिलाफ कानूनी लड़ाई में हार गए हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। लखनऊ में पुलिस और एक चरमपंथी के बीच मुठभेड़ की खबरें आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक ठाकुरगंज इलाके के हाजी कॉलोनी में एक चरमपंथी छिपकर फायरिंग कर रहा है। मौके पर यूपी पुलिस के अलावा एटीएस की टीम भी पहुंची हुई है। यूपी पुलिस के ट्वीट के मुताबिक चरमपंथी को घेर लिया गया है और ऑपरेशन जारी है। आइए सीधे चलते हैं लखनऊ हमारे पुराने साथी रामदत्त त्रिपाठी के पास। रामदत्त जी, क्या विवरण है आपके पास?
ये पता चला है कि कुछ देर पहले वहाँ फायरिंग हुई थी दोनों तरफ से ठाकुरगंज में, और उसके अलावा फिर पुलिस ने मिर्ची बम जिसको बोलते हैं वो काफी वहाँ डाला है, जिससे ये पता चला कि वो बेहोश हो गया था। लेकिन फिर सुना है कि कुछ सुगबुगाहट है और अभी एम्बुलेंस मंगाई है पुलिस ने, और पुलिस का कहना है कि हम उसको जिंदा पकड़ना चाहते हैं, उसके रिश्तेदारों के जरिए भी कुछ बात करवा रहे हैं कि वो जिंदा पकड़ लिया जाए। तो अभी कश्मकश जारी है। और सूचना ये है कि तेलंगाना पुलिस ने यहाँ यूपी पुलिस को कुछ अलर्ट किया था कि इस तरह के दो चरमपंथी दो जगह कानपुर में और लखनऊ में हैं, और ये भी पता चला है कि कानपुर में दो लोगों को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। एक खबर ये भी आ रही है कि मध्य प्रदेश में जो आज सुबह ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था, तो संभवतः उससे भी कुछ इन लोगों के तार जुड़े हो सकते हैं।
रामदत्त जी, लखनऊ में कल चुनाव होने वाले हैं या सातवें दौर का, ऐसे में मुठभेड़ होने को आप किस तरह से देखते हैं?
देखिए, चुनाव ये बनारस के आसपास होने हैं, 40 लगभग सीटों पर, और उसके पहले ये घटना, पुलिस का ये कहना है कि दोनों का कोई आपस में ताल्लुक नहीं है, और वहाँ चुनाव क्षेत्रों के लिए अलग से बल तैनात है, वहाँ सेंट्रल फोर्सेस तैनात है, तो अपेरेंटली तो कोई संबंधन नहीं है। लेकिन जो लोग आतंकवाद को एक बड़ा मुद्दा बनाते हैं चुनाव में, हो सकता है वो थोड़ा इसको भी भुनाने की कोशिश करें, इस पे भी बल देने की कोशिश करें।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका रामदत्त त्रिपाठी लखनऊ से। और इस बीच हमारे साथी दिलनवाज पाशा ने मध्य प्रदेश एटीएस चीफ राजीव टंडन से संपर्क स्थापित किया है, उन्होंने इसके बारे में कुछ और विवरण दिया है।
हम लोग को सुबह खबर मिली थी, जो एक भोपाल उज्जैन जो पैसेंजर है उसमें ब्लास्ट हुआ है, काला पीपल एक थाना पड़ता है शाजापुर के पास। जब उसकी इन्फॉर्मेशन मिली थी हमारे को, यहाँ पे खबर मिली थी ऐसा ऐसा ये ब्लास्ट हुआ है वहाँ पे, तो जो लोकल हमारे नियरेस्ट वहाँ पे एसपी साहब हैं, एसपी सीहोर, देन वी आस्क्ड एसपी शाजापुर, देन एटीएस टीम, ऑल टू मूव टू दैट डेस्टिनेशन। एवरीवन मूव्ड ओवर देयर। सेम टाइम वी वर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू अवर इंटेलिजेंस नेटवर्क, एट द सेम टाइम वी वर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद ऑल द सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज।
जी सर।
बेस्ड ऑन सर्चिंग ऑपरेशन, बेस्ड ऑन इनपुट एंड इंटेलिजेंस वी गैदर्ड एंड सेंट्रल इंटेलिजेंस इनपुट, देयर वर सर्टेन सस्पेक्ट्स व्हिच वी गॉट द इन्फॉर्मेशन कि वो सस्पेक्ट्स हैं, इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, तो बेस्ड ऑन दैट उस सारी जगह नाकेबंदी लगाई गई थी। तो शाम को भी 3 सस्पेक्ट हमारे को मिले हैं, और ये सस्पेक्ट मिलने के साथ साथ हमने ये इन्फॉर्मेशन भी सेंट्रल एजेंसी से फिर भी शेयर करी कि हमको ऐसे ऐसे लोग डाउटफुल ये लोग मिले हुए हैं। साथ ही साथ हम लोग ने जो वहाँ पे मौके पे जो एक्सक्लूसिव था उसके बारे में भी अपने फॉरेंसिक टीम को भेज के उनको भी एनालिसिस करी, तो लगा कि प्राइमरी ये लो इंटेंसिटी एक्सक्लूसिव है जो प्रॉपर विस्फोट करने के लिए रखा गया है। तो बेस्ड ऑन दैट ऑपरेशन अब ये 3 लोग को राउंड अप किया हुआ है, अब उनसे इंट्रोगेशन चल रहा है।
और आप लोग इसे हमला मान रहे हैं अब?
भाई, इन द सेंस जो प्राइमरी इनपुट हमारे को जो साइट पे देखा गया है वहाँ पे देखा उसको, और साथ ही साथ जो प्राइम सस्पेक्ट पकड़े गए हैं उनसे जो प्राइमरी अभी बात हुई उससे देख के लगता है कि इस तरीके का डेलिबरेट अटेम्प्ट है अटैक किया गया।
और सर, ये आपने जानकारी यूपी पुलिस को भी आपकी एजेंसी की तरफ से दी गई है, क्योंकि वहाँ पे भी एक
सेंट्रल एजेंसी से शेयर कर रहे हैं, डायरेक्टली यूपी से नहीं, हम सेंट्रल एजेंसी से।
और अभी आपके पास 3 लोग हिरासत में है?
जी।
मध्य प्रदेश एटीएस चीफ राजीव टंडन से बात कर रहे थे दिलनवाज पाशा। 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया से दबकर खेल रही भारत की टीम ने बाजी पलटते हुए ऑस्ट्रेलिया को 75 रनों से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। लोकेश राहुल, चेतेश्वर पुजारा, अचिंगराडेन रहाणे की जबरदस्त बैटिंग और अश्विन जडेजा की जोरदार बॉलिंग की बदौलत टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे टेस्ट मैच में 75 रनों से हरा दिया। भारत से मिले 188 रन के टारगेट का पीछा करते हुए मेहमान टीम दूसरी इनिंग में 112 रन ही बना सकी। वैभव दीवान की रिपोर्ट।
भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच भारत के नाम 75 रनों से जीता टेस्ट मैच। बेंगलुरु में चल रहे टेस्ट मैच का चौथा दिन था। चिन्नास्वामी स्टेडियम में आज 16 विकेटें गिरी। दिन की शुरुआत आज भारत के 213 पर 4 के स्कोर से हुई। अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा 5वें विकेट की साझेदारी को और मजबूत कर भारत को एक बड़े टोटल की ओर ले जाना चाहते थे, लेकिन मिशेल स्टार्क की एक गेंद अजिंक्य रहाणे के पैड पर लगी और वो LBW आउट हुए और ऑस्ट्रेलिया को आज की पहली सफलता मिली, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरी। चेतेश्वर पुजारा, जो कल 79 रनों पर खेल रहे थे, वो आज सिर्फ 13 रन ही जोड़ पाए और 92 रनों के स्कोर पर आउट हुए और धीरे धीरे भारतीय टीम दूसरी पारी में 274 रनों पर ही सिमट गई, जिसका मतलब ये कि भारत ने ली 187 रनों की लीड और ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए मिला 188 रनों का टारगेट। चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच को देख लग रहा था कि भारत इस मैच में वापसी कर सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की मजबूत बल्लेबाजी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने तेज शुरुआत की, 4 ओवरों में 22 रन। ऐसे में टारगेट छोटा और भारतीय टीम की चिंताएं बढ़ने लगी। उसी समय ईशांत शर्मा की एक तेज गेंद, जिस पर चूके ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैट रेनशॉ और विकेटकीपर साहा को अपनी कैच दे बैठे, जिसके बाद 9वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर सेट होते दिख रहे आक्रामक बल्लेबाज डेविड वार्नर विकेट के सामने LBW आउट हुए। जैसे ही सलामी बल्लेबाजों को भारतीय गेंदबाजों ने पवेलियन भेजा, टीम इंडिया में जोश बढ़ता दिखा। उमेश यादव को दी गई गेंद काम कर गई और उनकी पेस के आगे ऑस्ट्रेलिया कप्तान स्टीव स्मिथ और शॉन मार्श दोनों चलते बने। चाय के समय पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 101 पर 5, जिसके बाद अश्विन की फिरकी गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया की कमर ही तोड़ दी। चाय के बाद ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 11 रन ही जोड़ पाई और पूरी टीम एक एक कर आउट हो गई। दूसरी पारी में 112 रनों पर आउट हुई ऑस्ट्रेलिया टीम। 75 रनों से जीता भारत ये टेस्ट मैच। वो कौन सा पल था जब वरिष्ठ पत्रकार विजय लोकपल्ली को लगा कि मैच अब भारत के कब्जे में आ गया है?
जब भारत ने जो टारगेट रखा, एक बार 150 की बढ़त ले ली, तो वहीं से मुझे एक तरीके से मैं कहूंगा कि मैं निश्चिंत था। पिच की हालत, हमारे स्पिनर्स की ताकत और खास करके अगर मैं आपसे कहना चाहूं कि ये जो ऑस्ट्रेलियन टीम है, ये स्पिन नहीं खेलना जानती है, तो जब जब आप स्पिनिंग ट्रैक बनाएंगे तब तब आपकी आशाएं ऊपर रहेंगी।
फिर की गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने आज 6 विकेट्स ली और ये 25वां ऐसा मौका था जब रविचंद्रन अश्विन ने मैच में 5 विकेट्स ली हो। इस मैच में मैन ऑफ द मैच रहे KL राहुल, जिन्होंने पहली और दूसरी इनिंग्स में बेहतरीन बल्लेबाजी की। अब अगला टेस्ट मैच भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 16 मार्च से रांची में होगा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अब है 1-1 से बराबरी पर।
भारत ने बेंगलोर टेस्ट मैच जीता। मैच समाप्त हो जाने के बाद हमारे सहयोगी आदेश कुमार ने बात की भारत के पूर्व तेज गेंदबाज अतुल वासन से और उनसे जानना चाहा कि क्या भारत की ये जीत चमत्कार है, पिच का कमाल है या फिर टीम ने शानदार वापसी की है।
बिल्कुल जी, चमत्कार तो बिल्कुल नहीं है। विकेट का भी खेल नहीं है कि दोनों टीमों के लिए बराबर थी, पर जिस तरह से पीठ नीचे लगी थी उससे वापसी की है तो तारीफ करनी होगी, क्योंकि चमत्कार भारतीय टीम के खिलाफ और भारतीय टीम अगर मैच जीते तो इसको चमत्कार तो बिल्कुल नहीं माना चाहिए, क्योंकि जो हाल ही में फॉर्म रही है, हालांकि अगर पुणे के मैच को आप भुला दें तो जबरदस्त रही है, तो टीम तो बढ़िया है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कॉन्फिडेंस की जो कमी नजर आई पुणे में वो पूरी कर दी कि एक ही मैच से कोई टीम बहुत बढ़िया या बहुत खराब नहीं हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया तीनों दिन डोमिनेट करने के बाद आज जिस तरह से हारा है, तो ये तो बिल्कुल आग लग गई है सीरीज में।
मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला KL राहुल, जिन्होंने पहली पारी में 90 रन बनाए, दूसरी पारी में 51 रन बनाए, वो काफी सही है।
बिल्कुल, अगर लो स्कोरिंग मैचेस में किसी का इतना बड़ा योगदान रहे तो ये मानना होगा कि वो मैच डिसाइडिंग पारी के लिए उसने, हालांकि स्पिनर्स ने विकेट लिए और गेंदबाजों ने चारों दिन हाहाकार मचाई हुई थी, उसमें बल्लेबाज भी अगर इतनी कंसिस्टेंसी से परफॉर्म करता है तो उसी को ही मैन ऑफ द मैच बनना चाहिए।
आपको लगा कि आज तो विकेट का व्यवहार काफी अजीब सा लगा?
नहीं, मुझे लगा कि आज शायद और कल शाम को बेहतर खेल रहा था पिच, और मुझे लगा कि धीरे धीरे आते आते ये पिच बिल्कुल सही ना हो जाए बल्लेबाजी के लिए, पर फिर आज जो एक आधी बॉल नीचे रहती है तो वो जरूर इसमें फैक्टर देखने को मिला।
चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे के बीच जो शतकीय साझेदारी हुई वो इस मैच का टर्निंग पॉइंट बन गई।
बिल्कुल, और कल मुझे लगा कि जिस तरह से जल्दी विकेट खोने के बाद ये वापसी कर रहे थे तो मैच बदलता चला जा रहा था, और जितनी फाइट बैक कर रहे थे और आज आते ही उसका एंटी क्लाइमैक्स हो गया सुबह, तो मुझे लगा ये तो पूरी मेहनत जाया हो गई, पर फिर भी जो ईशांत शर्मा ने आखिर में थोड़े से रन जोड़े उससे थोड़ा मोमेंटम भारत की तरफ आ गया।
और आपको लग रहा है कि वार्नर का फुटवर्क बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा है भारतीय स्पिनर्स के?
देखिए, डेविड वार्नर की सब कॉन्टिनेंट में अगर आप औसत देखें, अमेरिका 25 की औसत भारत में है और सब कॉन्टिनेंट की औसत उसकी 28 की है, और उसके बावजूद उसकी औसत 50 से ऊपर है उसके करियर की, तो कितना इंपैक्ट प्लेयर है, पर एक ही डायमेंशन का प्लेयर है ये बात तो साफ हो चुकी है, क्योंकि कई प्लेयर्स बहुत कम होते हैं जो कि हर एक कंडीशन में जाके परफॉर्म करते हैं। तो आपको हाशिम आमला जैसे प्लेयर, और या विराट कोहली जैसे प्लेयर्स आपको कम नजर आएंगे, एबी डिविलियर्स जैसे प्लेयर जो कि हर सिचुएशन में आके रन बनाए, उस श्रेणी में अभी तक डेविड वार्नर आए नहीं है।
और इस जीत से अब भारतीय टीम आपको लगता है कि दबाव से निकल जाएगी और रांची में जो मैच होगा वो अब बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।
देखिए सबसे पहले तो विकेट की कैसी होगी इस पे अभी से टिप्पणी और अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि पिच कितनी आज विवाद विवाद में रही है इस सीरीज में, इससे आपको पता लग सकता है कि कितनी जरूरी सीरीज है दोनों टीमों के लिए, क्योंकि नंबर वन की लड़ाई है।
अतुल वासन से बात कर रहे थे आदेश कुमार गुप्त।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। केरल में एक अनाथाश्रम में 7 किशोरियों के साथ ब्लैकमेल और बलात्कार का एक मामला सामने आया है। वायनाड पुलिस ने सारे नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। केरल में पिछले दिनों इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। सुनिए इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
पिछले एक हफ्ते में केरला ने 3 बलात्कार के मामले देखा है। इन सारे मामलों में पीड़ित की उम्र 9 से 17 साल की है। इनमें से 2 लड़कियों ने आत्महत्या भी कर ली क्योंकि उनके मां के रिश्तेदार ने उनके साथ बलात्कार किया। एक हफ्ते पहले कन्नूर के कोटियूर में 17 साल की लड़की एक बच्चे की मां बन गई। इस मामले में पुलिस ने एक चर्च के पुजारी को गिरफ्तार कर लिया है। और आज ये खबर आई कि वायनाड के एक अनाथ आश्रम में 7 लड़कियों का बलात्कार जनवरी के महीने से 6 लोग करते आ रहे हैं। लेकिन अन्वेषी महिला संघ के अजीता को कोई आश्चर्य नहीं है। उन्होंने कहा,
I heard of these stories from Adivasi hostels in Attappady, Wayanad.
हम इस तरह के वाक्यों के बारे में बहुत समय से सुनते आ रहे हैं। फर्क इतना ही है कि अभी ऐसे मामले बाहर आ रहे हैं। लड़कियां या महिलाएं चपेट में ऐसे आ जाती हैं कि वो अपना मुंह भी नहीं खोल सकती हैं। इस तरह के मामले सामान्य हो गए हैं। ये थे अजिता के शब्द। वायनाड का मामला इसलिए बाहर आया क्योंकि किसी ने एक लड़की को रोते हुए एक दुकान से निकलते देखा। उसने ऑर्फेनेज के अधिकारियों को बताया, जिन्होंने फौरन पूछताछ की और पुलिस के पास मामला दर्ज किया। लेकिन महिला कार्यकर्ता रंजनी हरिदास इसको अलग नजरे से देखती हैं।
ये तो हमें भी बहुत शॉक कर रहे हैं क्योंकि वन ऑफ द अदर ऐसे केसेस आते रहे हैं, सेक्सुअल अब्यूज केसेस या मोलेस्टेशन जब हम बच्चे हैं हम सब ने फेस किया है, लेकिन उसके बारे में बात करने का कॉन्फिडेंस उस एज में हमको नहीं है। लड़की अगर यू नो उसका कुछ मोलेस्टेशन हुआ है या सेक्सुअल क्राइम उसके अगेंस्ट हुआ हो तो उसका शादी नहीं होगा, उसका रेपुटेशन खराब होगा कहकर बहुत लोग हैं। तो वैसे सोसाइटी में हम रह रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि वो इसी टारगेट बनते हैं। पुलिस स्टेशन में भी अगर एक लड़की केस फाइल लिए जाएंगी वहाँ भी हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग सोसाइटी है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इमीडिएटली एक पनिशमेंट नहीं देगा तो ऐसे क्राइम्स बढ़ते ही रहेंगे केरला में भी बाकी सब जगह पे भी।
इस बीच केरला सरकार ने वायनाड की बाल कल्याण समिति को रद्द कर दिया है। वजह ये है कि समिति के अध्यक्ष फादर थॉमस जोसेफ तेरकम और समिति सदस्य बेटी जोस के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है कि उन्होंने उस चर्च के पुजारी की मदद की थी जो 17 साल की लड़की का बलात्कार कर दिया था। मतलब ये कि पिछले एक हफ्ते में हमलावर शादीशुदा हैं, रिश्तेदार भी हैं और चर्च के पुजारी भी हैं। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
अलग अलग कीमतों के साथ एक ही तरह के बोतल बंद पानी को बेचने वाली कंपनियों और दुकानदारों पर सरकार ने शिकंजा कसने की पहल की है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने ट्विटर पर कहा कि एक तरह के बोतल बंद पानी को ज्यादा दामों पर बेचने वाले खुदरा दुकानदार और उनका उत्पादन करने वाली कंपनियों पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। पासवान का कहना है कि ऐसा करना गैर कानूनी है क्योंकि मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी MRP अधिकतम मूल्य से ज्यादा उपभोक्ता से वसूला नहीं जा सकता। एक रिपोर्ट के साथ सलमान रावी।
रामविलास पासवान के निशाने पर उत्पादन करने वाली कंपनियां और खुदरा विक्रेता हैं। पासवान का कहना है कि उत्पादन करने वाली कंपनियां भी एक ही तरह के बोतलबंद पानी का अधिकतम मूल्य अलग अलग छाप रही हैं, जिससे उनकी मिलीभगत का पता चलता है। अमूमन ये देखा गया है कि उपभोक्ता से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बड़े बड़े मॉल और 5-सितारा होटलों में अधिकतम मूल्य से ज्यादा बोतलबंद पानी की कीमत वसूली जा रही है, जबकि MRP यानी बोतल में छापे गए अधिकतम मूल्य में हर तरह के कर यानी टैक्स शामिल हैं। भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग में निदेशक बी एन दीक्षित कहते हैं,
एक ही जगह पर एक ही क्वांटिटी के इश्यूज को एक ही क्वालिटी रहे, एक ही ब्रांड रहे और सब कुछ जो है सेम रहे, उसको डिफरेंट डिफरेंट सेल प्राइस में बेच सकता है। वेरी स्ट्रेंज है ना, ये दुनिया में कहीं नहीं होता है। ये जो ह्यूमन लॉ भी होता है उस जस्टिस के अगेंस्ट भी है। तो यही एक चीज है, इस पर जो है गवर्नमेंट ने थोड़ा सीरियसली टेकअप किया है। तो इसे लोग अपना परेशान है, जो है बहुत दिनों से डिपार्टमेंट वगैरह में भी अपना देते हैं रिप्रेजेंटेशन, लेकिन ये कंज्यूमर इंटरेस्ट में नहीं, इसलिए जो है नहीं जो है।
अब मिसाल के तौर पर किनले की 500 ml की बोतल बाहर बाजार में 10 रुपए की है, मगर एयरपोर्ट और बड़े बड़े मॉल में ये 30 रुपए में बेची जाती है। मजेदार बात यह है कि इस 10 रुपए की बोतल की मॉल और एयरपोर्ट में बोतल पर ही अधिकतम कीमत 30 रुपए लिखी हुई है। बोतल बंद पानी के उत्पादककर्ताओं के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया पैकेज वाटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नवीन गोयल ने बीबीसी से बात करते हुए कहा,
अगर प्रोडक्ट सेम है then it is justified thing ki uski jo MRP hai that should remain same, kyunki agar ek aap kisi normal shop pe hain aap ja rahe hain to wo agar refrigeration mein nahi lagi hai tab bhi uski MRP wahi rahegi, aur agar ek koi refrigerate karke de raha hai tab bhi MRP to uski same hi rahegi, MRP should remain same if it is sold at some retail point, any of the retail point actually. देखिए ये तो मार्केट फोर्स की बात हो जाती है, और एमआरपी का और जो एक प्राइसिंग जा रहा है उसमें पूरी चेन है और मैक्सिमम मनी तो रिटेलर ही एक्चुअली उनके उसमें शेयर रहता है।
कंज्यूमर गुड्स एक्ट 2006 के प्रावधानों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एमआरपी का मतलब है कि वो उत्पाद उससे ज्यादा रकम पर बेचा नहीं जा सकता। बोतल बंद पानी के व्यवसाय पर नजर रखने वाले तुषार त्रिवेदी कहते हैं,
वो सिर्फ चार्ज कहाँ पर करते हैं, सिर्फ तीन जगह पर, एयरपोर्ट, फाइव स्टार होटल, अप मार्केट प्लेसेस में ही ये ज्यादा चार्ज होता है। इसका रीजन यही है कि जो फॉर एग्जांपल मैं फिलहाल एयरपोर्ट की बात करूँ, यहाँ पर लीज रेंटल इतने हाई है कि आप पैकेज वाटर की बात ना करें, आप किसी भी आइटम की बात करें सब में प्राइसेस हाई होते हैं। एक पर्टिकुलर आप इवन ब्रांडेड कॉफी की बात करें तो मार्केट में जो रेट है उससे ज्यादा पे देते हैं, या कोई ईटरी की बात करें, ईटिंग प्लेसेस की बात करें, जहां एक डोसा आपको से 250 रुपए 200 रुपीस मिलता है, जो ऑलमोस्ट या किसी भी मार्केट में 48 मिलता है। सो ये वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम रिलेटेड बहुत ही जनरल है, बिकॉज एयरपोर्ट पर या फाइव स्टार होटल में बात करें सब जगह ज्यादा प्राइसेस ही वो लोग चार्ज करते हैं।
हालांकि कानून स्पष्ट है, मगर उत्पादनकर्ताओं और खुदरा व्यापारियों की मिलीभगत की वजह से उपभोक्ताओं को एक ही पानी की बोतल या सोडा को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कीमतों पर खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
दिन भर शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5885, 7600, 9740, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
बिहार सरकार ने पूर्ण शराबबंदी तो लागू कर दी है, लेकिन शराबबंदी के बाद से ही गांजे और दूसरे नशे की खपत में उछाल आया है। वहीं अफीम की खेती भी बढ़ गई है। आलम यह है कि साल 2016 में बिहार में नारकोटिक्स विभाग ने जितना गांजा जब्त किया था, साल 2017 के शुरुआती दो महीनों में ही उससे 13 गुना ज्यादा गांजा जब्त किया जा चुका है। पूरा ब्यौरा दे रही हैं पटना से सीतू तिवारी।
बच्चे भी, बच्चे तो नहीं, बच्चे तो दूर हैं, तो कहां से आ पाएंगे?
बच्चे नाराज रहते हैं।
क्यों नहीं नाराज होंगे?
नाराज रहते हैं।
जिस घर का रोल मॉडल बिगड़ा रहा है।
49 साल के राम जीवन ने जब ये कहा तो उनकी आंखें डबडबा गईं। बिहार के डेहरी ऑन सोन में मिठाई की छोटी सी दुकान चलाने वाले राम जीवन को साल 1990 से ही शराब पीने की लत लग गई थी। अप्रैल 2016 में जब बिहार सरकार ने शराबबंदी की तो कुछ दिन तो वो बहुत बेचैन रहे, लेकिन बाद में उन्होंने गांजा लेना शुरू कर दिया। पटना के दिशा नशा मुक्ति केंद्र में बीते 3 महीने से भर्ती राम जीवन ने बीबीसी से बातचीत में कहा,
जैसे इंसान को भूख होता है तो खाने की ज़रूरत होती है, जब इसको रोज़ हम यूज करने लगते हैं, समय पर उसको खोजता है, मांगता है, डिमांड करता है बॉडी, ये चाहिए, नहीं मिलने से आत्मविश्वास डगमगाने लगता है।
दरअसल बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद से ही गांजे की खपत में उछाल आया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि विभाग ने साल 2016 में 496 किलो गांजा जब्त किया था, जबकि 2017 में सिर्फ जनवरी और फरवरी महीने में 6884 किलो गांजा जब्त किया है। बिहार में गांजा 3 राज्यों से आता है, उड़ीसा के नवरंगपुर, मलकानगिरी, जयपुर, फुलगामी और ब्रह्मपुर से, जिसे स्थानीय भाषा में आंध्रा कहा जाता है। त्रिपुरा से आने वाले गांजे को मणिपुरी कहा जाता है। साथ ही बिहार में गांजा छत्तीसगढ़ से भी आता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर टीएन सिंह बताते हैं,
आवक भी बढ़ी है, खपत भी बढ़ी है और इससे जुड़े लोगों का इसमें एक्टिविटी भी बढ़ गया है और भी कुछ लोग, नए लोग भी जुड़ गए हैं। जो पुराने लोग इस धंधे से जुड़े हुए थे फिर से एक्टिव हो गए हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट और उसका पूरा हिसाब पता होता है।
जहां बिहार में गांजे की खपत बढ़ी है, वहीं अफीम की खेती में भी एकदम से इजाफा हुआ है। बीते 5 साल में अफीम की खेती के नष्ट करने के आंकड़े देखें तो ये उछाल साफ नजर आता है। साल 2014 में नारकोटिक्स विभाग ने 24 एकड़, 2015 में 13 एकड़, 2016 में 374 एकड़ अफीम नष्ट किया। वहीं साल 2017 में फरवरी माह तक 65 एकड़ में फैली अफीम की खेती को विभाग ने नष्ट किया है। अफीम और गांजा के अलावा नई चुनौतियों के तौर पर कफ सिरप, एल्फ्रेक्स, नाइट्रोसिन, वेलियम, प्रॉक्सीवॉन टैबलेट की खपत बढ़ी है तो फोर्टविन मॉर्फिन इंजेक्शन का इस्तेमाल भी बढ़ा है। बीते 16 साल से नशा मुक्ति को लेकर काम कर रही राखी शर्मा कहती हैं,
और गांजा अभी क्योंकि इजीली अवेलेबल ड्रग है, कॉस्ट इफेक्टिव है कि कम पैसे में वो आसानी से मिल रहा है। इसके कारण हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे जो 16 साल 15 साल के भी हैं वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। ट्राई कर रहे थे, पहले नॉर्मल सिगरेट लेते थे, अब सिगरेट में भरकर गांजा ले रहे हैं।
आरा के 30 साल के मोहन का चेहरा मासूमियत से भरा है। प्रेम टूटा तो उन्होंने साल 2000 में शराब पीना शुरू किया, शराब छूटी तो गांजे की लत पकड़ ली। वो बताते हैं कि 10 रुपए की गांजे की पुड़िया आसानी से किसी भी दुकान पर मिल जाती है। उसे रोजाना 25 ग्राम के लिए 180 रुपए खर्च करने पड़ते हैं।
दारू बंद होने के बाद गांजा का मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। गांजा हो गया, हीरोइन हो गया, हम तो हीरोइन नहीं पीते हैं लेकिन गांजा पीते हैं। पुलिस पकड़ती है तो कभी कदाल गांजा छीन लेता है, बिक देता है पुलिस, इससे ज्यादा क्या करेगा।
पटना के दिशा नशा मुक्ति केंद्र की निदेशक राखी कहती हैं कि गांजे का नशा शराब से भी ज्यादा खतरनाक है।
जैसे गांजा इमीडिएट इफेक्ट तभी देगा जब आप बहुत ज्यादा अब्यूज कर रहे हैं, कम अब्यूज कर रहे हैं या कम मात्रा में ले रहे हैं, तो इनिशियली आपको नहीं दिखेगा उसका इफेक्ट। क्रेविंग जब बढ़ती चली जाती और उनका आदत जो है वो पूरे लत में हो जाता तो फिर उनके मेंटल इंबैलेंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते।
बिहार में नीतीश सरकार शराबबंदी को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है लेकिन सामने आ रही इन चुनौतियों से मुंह मोड़े बैठी है। सरकार की तरफ से अगर जल्दी कोई ठोस कदम ना उठाया गया तो बिहार के आने वाले भविष्य को नशे में डूबने से बचा पाना मुश्किल लगता है। सीतू तिवारी, BBC पटना।
दूसरे खेल समाचारों में, क्रिकेट के नियम बनाने वाली MCC ने साफ किया है कि 1 अक्टूबर 2017 से क्रिकेट के कई नियमों में बदलाव होगा। इसके तहत क्रिकेट बैट का साइज निर्धारित होगा और अभद्र व्यवहार को रोकने के लिए रेड कार्ड दिखाए जा सकेंगे। मैदान पर अभद्रता को रोकने के लिए अंपायर अब रेड कार्ड दिखाकर खिलाड़ी को स्थायी या अस्थायी रूप से मैदान के बाहर भेज सकेंगे और इस नियम के तहत उम्मीद है कि मैदान पर शालीनता को कायम रखा जा सकेगा। और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुरक्षा बल एक संदिग्ध चरमपंथी को पकड़ने के लिए अभियान चला रहे हैं। यूपी पुलिस के प्रवक्ता के मुताबिक कानपुर से भी 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इराक के मूसल से मिली खबरों के मुताबिक इराकी सेना ने पश्चिमी मूसल के सिटी सेंटर की कई अहम इमारतों पर अधिकार हासिल कर लिया है। इराकी सेना पश्चिम मूसल को इस्लामिक स्टेट से मुक्त कराने के अभियान में जुटी है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के मिसाइल डिफेंस शील्ड तैनात करने के बाद चीन ने कहा है कि वो अपनी रक्षा के लिए कदम उठाएगा। दक्षिण कोरिया का कहना है कि डिफेंस शील्ड उत्तर कोरिया के हमले से रक्षा के लिए लगाई गई है। सीरिया और इराक की सुरक्षा की स्थिति पर चर्चा के लिए तुर्की, रूस और अमरीका के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी तुर्की में जुटे हैं। सीरिया के संघर्ष में अलग अलग पक्षों का समर्थन करने वाले देशों के बीच ये पहली बैठक है। सोमालिया के नए राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद ने 6 मुस्लिम देशों के लोगों की यात्रा पर पाबंदी को लेकर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जारी ताजा आदेश की आलोचना की है। भारतीय टीम ने बेंगलुरु टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया पर 75 रन से जीत दर्ज की है। BBC समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद कर रहे थे शाकिर आलम, रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।